शांति, ओम शांति। आज शिव बाबा ने अपना परिचय खुद ही दिया है, मैं कौन हूं। शिव बाबा कहते हैं, मैं सत चितानंद स्वरूप हूं, मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं, मैं इस बेहद के ड्रामा का मुख्य एक्टर हूं, प्रिंसिपल एक्टर हूं। मेरा पार्ट सबसे न्यारा है। अगर हम ये बातें समझ जाएं, तो भगवान का सही परिचय हमें मिल जाए। लेकिन मनुष्य भगवान के बारे में कितनी बातें कहते हैं, जितने मुख उतनी बातें दुनिया में ईश्वर के बारे में। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं, मैं खुद ही आकर के अपना परिचय देता हूं। और तुम बच्चों का भी परिचय मैं ही देता हूं, और इस बेहद रचना का ज्ञान भी मैं ही देता हूं। तो भगवान अपने लिए ये सब जो भी बताते हैं, ये कोई देहधारी नहीं बता सकता है, केवल एक परमात्मा ही ये बता सकते हैं। तो आज बाबा ने अपने आप का और इस बेहद रचना का बहुत बड़ा राज भी हमें खोला है, वो भी हम सुनेंगे बाबा के मुरली से। क्योंकि ये बीज रूप ही कह सकता है, जिसको सारे वृक्ष का पता है, जो तना है, जो बीच में आए हैं, वो नहीं बता सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान किसी देहधारी ने नहीं दिया है, ब्रह्मा बाबा ने नहीं दिया है। ब्रह्मा बाबा कहते, मुझे भी कुछ पता नहीं था, मुझे भी तो देने वाला वो शिव बाबा ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इस निश्चय के आधार से जो भगवान हमें कहते हैं, उसको धारण कर हमें उसी पर चलना है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 14 मार्च 2026 है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर वन एक्टर है। शिव बाबा नंबर वन एक्टर हैं, जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। सबसे बड़ी एक्ट भगवान की कौन सी है? पतितों को पावन बनाना। बाप जैसी एक्ट, माना जो भी पाठ बजाते हैं बाप, बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर वन एक्टर है, जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। तो इसीलिए मनुष्य अपने ऊपर ये दावा कभी नहीं लगा सकते कि मैं सब पतितों को पावन करूंगा, ये भगवान का ही कार्य है। प्रश्न है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग एक बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? क्यों सन्यासी रूहानी योग नहीं सिखा सकते? वो तो हठ योगी सिखाते हैं। बाबा ने इसका कारण बताया है, तो सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं। कैसे? उत्तर है, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखाते हैं। अब वो तो रहने का स्थान है, तो वो जिस्मानी योग हो गया। अब जो घर में रहने वाला है उनसे योग नहीं है, पर घर से योग है। अब घर तो वैसे भी कोई घर में जो रहता है उनसे योग लगाता है ना, चार दीवारों से थोड़ी योग लगाता है। तो वो जैसे जिस्मानी योग हो गया घर से योग लगाना, तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते हो, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। उस सुप्रीम रूह से योग लगाते हो, वो तो घर से केवल योग लगाते हैं, सुप्रीम रूह जो उस घर में रहता है उससे नहीं लगाते। इसीलिए फिर क्या कह देते, अहम ब्रह्मास्मि। उसी को ही शिव समझ लिया, ब्रह्म को ही शिव समझ लिया। शिवो हम भी कह देंगे तो शिव को ब्रह्म को ही शिव मान लिया। तो तुम्हारा योग रूहानी योग है, ये योग बाप ही सिखला सकते हैं। मैं ही अपना परिचय देकर अपने साथ योग लगवाता हूँ, तो ये योग बाप ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखला न सके। क्योंकि क्यों नहीं सिखला सकते? क्योंकि वही बाप तुम्हारा सच्चा रूहानी बाप है। जिस्मानी बाप भी नहीं सिखा सकता है, सच्चा रूहानी बाप ही अपने साथ योग लगवाता है। गीत है, तू प्यार का सागर है, ओम शांति। बच्चे बहुत लोग कहते हैं, बाबा बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति। ओम शांति शब्द तो बहुत प्रख्यात है ना, ओम शांति बहुत लोग कहते हैं, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं। ओम शांति माना अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते हैं। अपनी पहचान तो देते हैं, ओम शांति कहते भी है, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये नहीं समझते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं, कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, ये तो आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं, इसलिए आत्मा क्या कहती है, मैं हूँ शांत स्वरूप। तो ओम शांति का अर्थ क्या हो गया, मैं हूँ शांत स्वरूप। ये मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं, तो कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने कारण, बीज रूप होने कारण भी, जो रचना रूपी झाड़ है, हाँ बाबा कहते हैं मैं सबका बाप होने कारण, बीज रूप होने कारण भी, जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष है, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। बीज हूँ तो मैं इस कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो, पेड़ देखते ना, कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ, वो बीज तो जड़ है। बहुत आवाज लाउड नहीं, ठीक है। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ, वो बीज तो जड़ है। हम जान सकते ना, वो बीज तो जड़ है, वो तो नहीं कहेगा कुछ। तो बाप समझाते हैं, ये कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूं, मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूं। ये जो नाटक है, झाड़ भी कहो नाटक भी कहो, ये जो झाड़ है जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, तो बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूं, बाबा भी एक्टर है। बच्चे कहते हैं हे बाबा, पतित पावन एक्टर बन आओ। हे बाबा, शिव बाबा कहते हैं मैं भी एक्टर हूं, तो बच्चे क्या कहते हैं, पतित पावन एक्टर बन के आओ, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। तो हे बाबा, पतित पावन एक्टर बन आओ और आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूं, पतित से पावन बनाने की एक्ट, यानी वो पार्ट बजा रहा हूं। मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय में ही होता है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। ये डायरेक्ट भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ, मेरा नाम शिव है। तो बच्चों को ही तो समझाएंगे, बना आत्माओं को समझाएंगे, मनुष्यों को समझाएंगे। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की तो नहीं होती है ना, बंदरों को थोड़ी भगवान राजयोग सिखाएंगे, मनुष्यों को ही सिखाएंगे। तो पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है, परंतु बाप कहते हैं कि इन पांच विकारों के होने कारण भले है सूरत मनुष्य की, परंतु हाँ बाबा कहते हैं इन पांच विकारों के होने कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदर जैसे है। है मनुष्य लेकिन कर्तव्य बंदर जैसे हैं। तो बच्चों को बाप समझाते हैं कि पति तो सब अपने आप को कहलाते ही है, सब कहलाते हैं पतित पावन सीताराम, तो पतित तो खुद को कहलाते ही है। आरती में भी गाते हैं मैं मूर्ख खल कामी पापी, तो पतित तो अपने को कहलाते ही है। परंतु ये नहीं जानते, पतित कहलाते हैं परंतु ये नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाते हैं। पतित हूं लेकिन किसने बनाया पतित, ये नहीं जानते। और पावन फिर कौन बनाएगा, ये भी नहीं जानते। पतित पावन है कौन जिसको बुलाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते, ये भी नहीं जानते। चलो पतित पावन कौन है ये नहीं पता, पतित कैसे बने पावन कैसे बनेंगे ये भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि हम एक्टर्स हैं इस बेहद नाटक शाला में, हम एक्टर्स हैं ये भी नहीं जानते। और हम आत्मा ये चोला लेकर पाठ बजाती है, ये भी नहीं जानते। हाँ भले कहते हैं लेकिन उस रूप से चलते तो है नहीं। आत्मा परम धाम से आती है, आकर के पाठ बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है, भारत पावन भारत पतित। किसने बनाया पावन, किसने बनाया भारत को, पतित कौन बनाता है भारत को, रावण ने। हाँ पतित किसने बनाया, रावण ने। गाते भी हैं कि रावण का लंका पर राज्य था। अब बाप बेहद में ले जाते हैं, लंका कोई वो छोटा टापू नहीं श्रीलंका, लेकिन बाप बेहद में ले जाते हैं। क्या कहते हैं, हे बच्चे ये सारी सृष्टि बेहद का टापू है, सारी सृष्टि बेहद का टापू है, वो तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। अगर देखे सतयुग में जो सारी सृष्टि होगी ना, जो धरती होगी, वो पूरा जैसे एक ही टापू जैसा होगा ना, ऐसे नहीं बीच बीच में सागर होगा, नहीं एक ही धरती होगी, बाकी चारों तरफ सागर। तो बाबा कहते हैं इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। तो बच्चे कहते हैं बाबा अगर राम राज्य था तो वो राम राज्य कहाँ था? बाबा राम राज्य कहाँ था? तो बाप कहते हैं बच्चे वो तो यहाँ ही था, इसी भारत भूमि पर ही था, जिसको सब फिर से चाहते हैं कि वो राम राज्य फिर से आ जाए, ये सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो, इसलिए अभी सनातन धर्म यही शब्द कह रहे हैं। तो बाबा कहते सनातन कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म, हिंदू धर्म के नहीं हो। तो मीठे मीठे सिक्की लदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे, तुमको वो सतयुग का राज्य किसने दिया था? किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉड फादर ही ये वर्षा देंगे। तो बाप समझाते हैं कितने यहाँ भारतवासी हिंदू तो बने, फिर जब और धर्म पिताएं आए तो वो फिर धर्म पिताओं का सुन करके कैसे फिर उसी धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो बाप समझाते हैं कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया, जबरन मुसलमान भी बनाया, हाँ अगर नहीं बनेंगे तो सिर काट देंगे, इसीलिए बनना ही पड़ेगा। तो मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया, जब क्रिश्चियंस का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। ये सब मिशनरीज आई, क्रिश्चियन मिशनरीज, मुसलमानों की मिशनरीज आई, सबको मुसलमान बनाया, क्रिश्चियन बनाया। अफ्रीका में आप देखेंगे वहां पर पहले कोई उस रूप से धर्म नहीं था, परंतु जो दक्षिण में जो आए वो क्रिश्चियंस आए, तो वो सब क्रिश्चियंस है, और जो नॉर्थ में गए वो मुसलमान थे, तो वो सब नॉर्थ में सब मुस्लिम है। तो इसीलिए वो भी अंतर पड़ गया, क्योंकि जो मिशनरीज गई उनको उसी धर्म में कन्वर्ट किया। तो बाबा कहते हैं मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया, क्रिश्चियंस का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया, फिर बोधियों का तो कोई यहाँ राज्य था ही नहीं, भले बुद्ध का हाँ वो दिखाते हैं यहाँ उसने बहुत प्रचार किया, लेकिन बुद्धिज्म का राज्य यहाँ भारत में नहीं था। आप जा देखेंगे श्रीलंका में है, बर्मा में है, थाईलैंड में है, उन देशों में महात्मा बुद्ध बौद्ध गए, तो उन देशों में बुद्ध बौद्ध धर्म शुरू हुआ, लेकिन भारत में नहीं हुआ, पर बोध ही बौद्ध बन गए भारत में। तो बाबा कहते हैं यहाँ राज्य भी नहीं हुआ था बोधियों का, तो भी बौद्धों को बौद्ध ही बनाया, कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्राय लोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो, भले सनातन कहते लेकिन देवी देवता शब्द तो नहीं बोलते ना, तो वही धर्म था, प्राय लोप हो गया, केवल चित्र है, तो फिर स्थापन होगा, तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो। किसलिए ब्राह्मण वर्ण में आए हो? देवता वर्ण में जाने के लिए। इसीलिए जब ब्राह्मणों को संबोधन भी करते हैं ना, ब्राह्मण देवता, हाँ ब्राह्मण देवता, तो ब्राह्मण किस लिए बनते हैं? देवता वर्ण में जाने लिए। गाते भी हैं ब्राह्मण देवताए नमः, पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं फिर देवता, पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया, देवताओं ने स्वर्ग नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया। ये है ही भारत का प्राचीन योग। पहले पहले जो राजयोग था जिसका गीता में वर्णन है, तो गीता का योग किसने सिखलाया था? राजयोग का वर्णन गीता में है, किसने सिखलाया था राजयोग? ये भारतवासी भूल गए हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे योग तो मैंने सिखलाया, जी बाबा कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग तो मैंने सिखलाया। ये है रूहानी योग, बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि भी जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, ब्रह्म से योग लगाओ, ये भी जिस्मानी योग हो गया, घर से योग लगाओ। ये तो बाबा कहते हैं वो तो जिस्मानी योग हो गया, अब वो तो रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वो कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। ब्रह्म तत्व सुप्रीम रूह नहीं है, परम आत्मा नहीं है, वो कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे, तुम अपने धर्म को भी भूल गए थे, बाप को भी भूल गए थे, धर्म को भी भूल गए थे। ये भी ड्रामा में नूंद है, भूलना ये भी ड्रामा में नूंद है। विलायत में तो योग था ही नहीं, अभी जो विश्व में योगा डे मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे या मेडिटेशन डे, ये भारत से ही तो लिया है। मोदी जी गए थे ना यूनाइटेड नेशंस में और उसने ये राय दी कि ऐसे इंटरनेशनल योगा डे होना चाहिए। तो देखो 21 जून को सारी दुनिया में ये मनाते, पर गया तो भारत से है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, विलायत में ये योग था नहीं, हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। वो निर्वृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कभी राजयोग सिखला न सके, सिखाए वो कौन राजयोग सिखला सकता है? सिखाए वो जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजा ही भी छोड़ देते हैं। अब ये बहुत गहरा बात गहरी बात है कि राजयोग वही सिखाए जो जानता हो, वो तो ठीक, लेकिन राजयोग से राजा ही मिली। अब सन्यासी ये राजयोग क्यों नहीं सिखला सकते हैं? वो तो और ही राजा ही छुड़वाते हैं, घर बार भी छुड़वाते हैं, सन्यासी बना देते हैं, तो राजा ही कैसे सिखाएंगे? सन्यासी लोग तो राजा ही भी छोड़ देते हैं, ग्रस्त भी छोड़ देते हैं, तो राजयोग ग्रस्तियों के लिए है क्योंकि राजा बनते हैं। तो सन्यासी लोग तो राजा ही भी छोड़ देते हैं। गोपी चंद राजा का मिसाल है ना, गोपी चंद राजा कहते हैं बहुत बहुत प्राचीन काल का राजा था, और वो गोरखनाथ जो उनके गुरु थे उसने उससे डायरेक्ट उन्होंने दीक्षा ली और सन्यासी बन गया, ऐसे बताते हैं। तो बाबा कहते हैं गोपी चंद राजा का मिसाल है ना, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, तो सन्यासी तो और ही राजाई छुड़वाते हैं, राजा भी छोड़ करके राजाई सन्यासी बन गया, तो राज्यों कैसे सिखा सकते? उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वो फिर राज्यों कैसे सिखला सकते हैं? बाबा तो हमें राजाई नहीं छुड़ाते, परिवार नहीं छुड़ाते, बाबा कहते सब कुछ करो, सब कुछ संभालो, लेकिन बेहद के वैरागी, तो ये तो भगवान ही सिखला सकता है। तो वो फिर राजयोग कैसे सिखला सकते? इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत हो गया है, अभी गिरा की गिरा है ना। कई जैसे झाड़ होते इतने पुराने हो जाते हैं लगता कि अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जर्जरी भूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना भी पड़ता है कि कहीं अगर अपने आप गिर जाए तो किसी को चोट लगे, कोई उसके नीचे आ जाए, इसलिए उनको जबरदस्ती भी गिराना पड़ता है, तो अंत पे उसको गिराना पड़ता है। वैसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमोप्रधान है, इनमें कोई सार नहीं है, इनका जरूर विनाश होगा। इसके पहले, विनाश होने से पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी यहाँ ही करनी होगी। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता ही नहीं है, ये विलायत में जाकर के योग सिखलाते हैं सन्यासी, परंतु वो है हठ योग, ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है। अनेक प्रकार के हठ योग हैं, ये है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वो सब है जिस्मानी। कौन सा है रूहानी योग? राजयोग। अपने को आत्मा समझकर मुझे यथार्थ रूप से याद करो, तो वो जो योग सिखाते हैं उस रूप से तो नहीं सिखाते हैं। वो सब है जिस्मानी, मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार ये राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा न सके, कदाचित है ना, बिल्कुल सिखा नहीं सकते। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि माँ एकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हठ योगी ऐसे कभी नहीं कहेंगे तुम हठ योग करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे, ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि हठ योग से पाप तो मिटते नहीं है ना। भले स्वस्थ होते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन पाप नहीं मिटते। पाप तो तब मिटे जब आत्मा समझकर परम आत्मा उस बिंदु को याद करे। तो हठ योग कब ऐसे, हठ योगी कभी ऐसे कह न सके। बाप तो आत्माओं को समझाते हैं, अब ये नई बात है, वह आत्माओं को नहीं समझाते, खुद ही देह अभिमान में तो आत्माओं को कहाँ समझाएंगे, ये नई बात है। तो बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, उनको अपनी देह है नहीं, इसका नाम बाप को अब देह है नहीं, इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, इसका नाम बदल देते हैं क्योंकि मरजीवा बनाए। पहला नाम तो दादा लेखराज था, फिर शिव बाबा की प्रवेशता हुई और शिव बाबा ने इनका नाम बदल दिया। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मरजीवा बना है। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मरजीवा बने, ग्रस्त आश्रम छोड़ निर्वृत्ति मार्ग ले लिया, तो तुम्हारा भी मरजीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, संदेश पुत्रियां नाम लाई थी, सबके नाम बताए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हैं हम नाम दे और फिर भाग जाए, बाबा उसको नाम दे और वो भाग जाए तो फालतू हो जाता है वो नाम देना भी। पहले आने वालों के जो नाम रखे वो बहुत रमणीक नाम थे, है ना, सिंगल नाम नहीं था, सब डबल डबल, आत्म मोहिनी, आत्म इंद्रा, हृदय मोहिनी, तो डबल डबल नाम थे, वो बहुत रमणीक थे। अब नहीं रखते हैं उनका, रखे अब बाबा कहते अगर रखे तो उन किसका रखे, उनका रखे जो सदैव कायम भी रहे, अगर छोड़ के चले गए फिर तो वो नाम भी तो सब खत्म हुआ ना उनका, तो कायम रहे तो नाम रखे, बहुतों के नाम रखे, फिर बाप को फारकती दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। तो बाप समझाते हैं कि ये ज्ञान क्रिश्चियंस की बुद्धि में भी बैठेगा, बैठेगा किसकी बुद्धि में बैठेगा, कौन से क्रिश्चियंस की बुद्धि में बैठेगा, भले जन्म क्रिश्चियन घर में लिया होगा, वो धर्म उनका वो होगा, लेकिन बाबा के बन जाते हैं, तो बाबा के बन गए तो अपने आप को फिर ब्राह्मण कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान क्रिश्चियंस की बुद्धि में भी बैठेगा, इतना जरूर समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर के सिखाया था, ये जरूर समझेंगे। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा वो ठहर जाएगा, बाकी अगर कन्वर्ट नहीं हुआ है वो उसी धर्म का है तो थोड़ा तो समझेगा, बाकी पूरा ज्ञान नहीं समझेगा। तो इस धर्म का होगा तो वो समझ जाएगा, वो ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, ये दादा भी तो मनुष्य है ना, ब्रह्मा बाबा भी तो मनुष्य है, ये भी कहता है कि मैं किसकी सदगति नहीं कर सकता। ये तो बाबा हमको सिखलाते, तो शिव बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सदगति भी याद से ही होगी। शिव बाबा ने इसको भी कहा कि तुम्हारी सदगति शिव बाबा की याद से ही होगी। तो बाप कहते हैं, बाप कहते हैं कि बच्चों हे आत्माओं मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एजेड प्योर थे, फिर खाद पड़ गई। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना था, सोना थे, अब आयरन एज में आकर के पहुंचे हैं। ये योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है, पिछले कल्प में भी सीखा था पर भूल गए, फिर बाबा कहते इसलिए कल्प कल्प योग इस योग को सीखना पड़ता है। तुम जानते हो इसमें भी कोई पूरा जानते कोई कम जानते, सब तो पूरा नहीं जानते, कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं तो यहाँ क्या सिखाते हैं, देखने आते हैं यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, जिसके इतने बच्चे आकर के बने हैं, जरूर कुछ होगा तो जाकर के उनसे पूछे तो सही। हाँ, इतने सारे वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं तो जरूर इनका कोई पिता ब्रह्मा होगा ना, तो जरूर हम जाकर के पूछे इनसे, इनसे जाके पूछे तो सही तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है, तो पूछना चाहिए ना। हाँ, उनको जरूर पूछना चाहिए, परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है जो आकर के हम लोगों से पूछे कि तुम ब्रह्मा कुमार कहलाते हो तो ब्रह्मा से तुमको क्या मिलता है, इतनी भी बुद्धि नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि, सत्युग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एजेड थे, फिर सिल्वर एज दो कला कम हुई, इसीलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए ना। ये भी पाठशाला है, पाठशाला है, 33 मार्क से जो नीचे होते हैं वो फेल हो जाते हैं, अभी तो शायद 35 किया 50 किया पता नहीं, उसके नीचे हुए तो फेल हो गए, तो 33 मार्क 1/3 कहते थे, 1/3 के भी नीचे गए मार्क्स तो फेल। तो तो 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डिनास्टी संपूर्ण नहीं है, राम सीता की डिनास्टी संपूर्ण नहीं है, इसीलिए सूर्यवंशी बन न सके। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। सूर्यवंशी में सब तो नहीं जा सकेंगे, इम्तिहान बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तिहान होता था, अभी वो IAS एग्जाम होते हैं, वो सबसे कठिन एग्जाम होते हैं IAS के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और उसमें अगर कोई पहली बार में पास हो गया तो बहुत ऊंचा पद ले लेता है ना, ये SDM कलेक्टर आदि जो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं वो सब वही पास करके बने हैं, सेक्रेटरी इज गवर्नमेंट के। तो बाबा कहते आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तिहान होता था, अब सब थोड़ी पढ़ सकते थे, कोटों में कोई निकलते हैं, कोई चाहे कि हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, बनने की इच्छा है तो बाबा कहते उसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। अब कोई कहे मैं IAS एग्जाम देना चाहता हूँ तो मेहनत चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है ऐसे ही तो IAS एग्जाम पास हो जाओगे। तो यहाँ भी कोई कहे कि मैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनूं और पढ़ाई वढ़ाई कुछ है नहीं, ज्ञान योग कुछ है नहीं, तो कैसे बनेगा। तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी तो पढ़ रहे हैं श्रीमद से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं। अगर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है तो मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना पड़े। तो बाबा कहते हैं वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो मात पिता को फॉलो करते हैं वही उनके तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा के तख्त पर कौन बैठेंगे, जो इस समय पूरा फॉलो करते हैं। सूर्यवंशी 8 डिनास्टी चलती है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट द सेकेंड चलता है। अब तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है, क्रिश्चियन से तुम्हारा कनेक्शन अधिक है, क्यों, क्रिश्चियन से ही कृष्ण, क्राइस्ट से ही कृष्ण, तो बहुत कनेक्शन है, इसीलिए क्राइस्ट की जो जन्म वगैरह दिखाते कृष्ण से बहुत मेल खाता है, तो इसीलिए तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हब की, भारत की राजाई किसने हब की, क्रिश्चियंस राजा, क्रिश्चियंस ने भारत का अथाह धन ले गए, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो कि वो धन तो सब चला गया, अब विचार करो या धन नहीं है तो फिर सतयुग में कितना अथाह धन कैसे आ गया, अथाह धन कैसे आ जाएगा सतयुग में, अभी तो नहीं है, कैसे आ जाएगा, वहां की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सतयुग की भेंट में तो अभी कुछ भी धन नहीं है, वहां सब खानियां भरती हो जाती है। सतयुग में क्या होगा, सभी खानियां जो अभी है ना, सोने की तांबे की जो भी खानियां है, धीरे धीरे सब खाली होती जाती है, सब खत्म होता जा रहा है, रिसोर्स खत्म होता जा रहा है, और वहां सब फिर भरपूर हो जाएगा, तो कैसे भरपूर हो जाएगा। बाबा कहते हैं वहां सब खानियां भरपूर हो जाएगी, अब तो हर चीज की खानियां खाली होती जाती है, फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियां भरपूर हो जाएगी, वंडरफुल होगा, चक्र रिपीट होते ही सारी खानियां भरपूर हो जाएगी। तो मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो, फिर आधा कल्प बाद ये रावण आएगा, आएगा रावण, फिर तुम राजाई गंवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो, हमने तुमको हीरे जैसा बनाया था, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया है। समझते नहीं है कि ये रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। रावण ने कहते हैं ये रावण तो परंपरा से चलाता है, परंपरा से चलाता है, ऐसे समझते हैं। तो बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद ये रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने के कारण अपने को देव देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते। कोई भी धर्म वाली आत्मा तुम्हारे जैसा सुख नहीं देख सकती। सबसे अधिक भी गरीब तुम बंदे हो। दूसरे धर्म वाले तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, सबसे पहले तो क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब तो राजा ही कर सके। जब बहुत क्रिश्चियंस हो गए तब उनकी राजाई शुरू हुई। तुमको तो पहले ही राजाई मिल जाती है, तुम यहाँ पर पढ़ाई पढ़ रहे हो और सत्युग में तुरंत जाके राजा बनेंगे, तो पहले ही राजाई मिलती है। वो तो सब, ये तो सब ज्ञान की बातें हैं। तो बाप कहते हैं हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम दे अभिमानी रहे हो, अब दे ही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो, मैं आत्मा हूँ, मुझे मैं दे ही अभिमानी बनू। बाबा कहते ये घड़ी घड़ी भूल जाते हो, आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंचे। चोटी सबसे ऊंची होती है शरीर में, तुम हो सबसे ऊंचे। सन्यासी तो ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते। बहुत बड़ी बात कह दी कि क्योंकि वो ब्रह्म से योग लगाते हैं, बाप से नहीं, इसलिए उनके विकर्म भी विनाश नहीं होते। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाए तब बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। अर्थात सभी को सतो प्रधान बनाते का अर्थ क्या हुआ, सभी को, सभी की ज्योति जग जाती है। सतो प्रधान बनाना माना सब आत्माओं की जो ज्योति बुझी हुई थी उसको फिर से जगाते हैं। हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। तुम हो, हर एक को अपना पाठ मिला है, तुमको भी पाठ मिला है, लेकिन तुम्हारा पाठ कौन सा है। बाबा कहते तुम हो हीरो हीरोइन पाठधारी, सब पाठधारी है लेकिन हम बच्चे, बाबा कहते हीरो हीरोइन पाठधारी हो। तुम भारतवासी सबसे ऊंच हो, जो राज्य लेते हो फिर गंवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता। वो राज्य लेते हैं बाहुबल से। तो बाबा ने समझाया है जो विश्व के मालिक थे वो ही बनेंगे, फिर भी वो ही बनेंगे, जो पहले कल पहले बने थे विश्व के मालिक वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय और कोई सिखला न सके। जो सिखाते हैं बाबा कहते वो यथार्थ योग, वो राजयोग नहीं है। वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते, अभी है अंत, सभी दुख से छूटते हैं। अंत में अंत है तो सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबर वार आना है। पहले सुख देखना है फिर दुख देखना है, ये सब समझने की बातें हैं। हर एक आत्मा जो भी परम धाम से पहले आती है, आते ही दुख नहीं देखती है, वो सुख देखती है, फिर धीरे धीरे उसको वो दुखी होती है। तो पहले सुख देखना है फिर दुख देखना है, ये सब समझने की बातें हैं। तो कहा जाता है अब बाबा को याद करना है तो उसके लिए क्या कहा जाता है, हथ कार डे दिल यार डे, हाथों से काम करो पर दिल बुद्धि योग बाबा के साथ लगा हुआ हो, काम करते रहो बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की, तो आशिक और माशूक कैसे एक दो को याद करते हैं, और कोई काम छोड़ के बैठ नहीं जाते हैं याद करने लिए, सब काम करते कर भी एक दो को याद करते हैं। तो तुम भी बाबा कहते हथ कार दे दिल यार दे, काम करते रहो बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की, अभी वो माशूक आया हुआ है, सभी आत्माएं क्या हो गई, बाबा कहते माशूक आया है तो हम आशिक क्या हो गई, उनकी सजनिया हो गई, है ना, आशिक है माना सजनिया है। तो सभी आत्माओं यानी सजनियों को गुलगुल बनाए साथ ले जाएंगे, तो माशूक के साथ जाना है तो गुलगुल बनना पड़ेगा ना, शुद्ध पवित्र बनना पड़ेगा, श्रृंगार आत्मा का करना पड़ेगा। तो बेहद का साजन और फिर है बेहद की सजनिया, हम सब बेहद की सजनिया, वो बेहद का साजन। वो कहता है, क्या कहता है बेहद का साजन, वो कहता है मैं सबको ले जाऊंगा, वहां साजन आया है वो सब सजनियों को ले जाने लिए, तो वो साजन कहता है मैं सबको ले जाऊंगा। फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जा करके पद पाएंगे, भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, बाबा मना नहीं करते, भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, हे आत्मा ग्रस्त व्यवहार में भी रहो बच्चों को संभालो, लेकिन हे आत्मा तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो, यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। तो बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं, कैसे बनते हैं स्वर्गवासी, बाप को याद करने से। स्टूडेंट को तो खुशी में रहना चाहिए, स्टूडेंट बने हैं पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो कितनी खुशी में रहना चाहिए, ये तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है, कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है, कोई से बहस करने की दरकार नहीं है, हाँ तुम ये ऐसे कैसे कहते हो, ये नहीं, बाबा कहते डिबेट नहीं करो बहस नहीं करो, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाई देते हैं ना, अभी ये पांच विकारों की बीमारी हमारे से छूट रही है, हम पावन बन रहे हैं, तो मनुष्य जैसे बीमारी से छूटते हैं तो बधाई देते हैं ना, यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है, थोड़े समय में बाबा कहते जय जयकार हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी थोड़े समय में। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है, बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा सूर्यवंशी डायनेस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, पाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। वरदान ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज भी चाहिए, ताज भी मिलेगा तो तिलक भी मिलेगा और तख्त भी, तो इसीलिए तीनों के ही अधिकारी बनते हैं। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। पहले तख्त मिला, फिर उसको तिलक लगाया, फिर ताज पहनाया। तो जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन, सरल याद के लिए क्या करना होगा? सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, ये बहुत जरूरी है। सरलता का गुण धारण करो तो बाबा की याद भी सरल हो जाएगी, क्योंकि अंदर बुद्धि में सरल है, माना किसी को खिटपिट नहीं है, तो याद भी तो सरल हो जाएगी ना। तो सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ, संस्कारों को सरल बनाओ। कहिए ना, वो अपने आप को बदल ही नहीं सकते, सरल नहीं बन सकते, फ्लेक्सिबल नहीं बन पाते अपने आप को। तो इसीलिए बाबा कहते हैं संस्कारों को सरल बनाओ तो सरल याद रहेगी, और उसके लिए सरलता का गुण धारण करो। अब व्यक्ति इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो के अंतर्गत विजयी बनने का फाउंडेशन है। कैसे बनेंगे विजयी? विजयी बनने का आधार क्या है? निश्चय। तो विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत निश्चिंत रहते हैं, हाँ, बिल्डिंग हिल नहीं सकती, निश्चिंत रहते हैं। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। हाँ, ड्रामा में निश्चय है तो मुख से क्या निकलेगा? अगर ड्रामा में पूरा निश्चय है तो मुख से क्या शब्द निकलेंगे? वाह 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 वाह, क्योंकि ड्रामा पर पूरा निश्चय है ना। तो ड्रामा पे भी निश्चय तो वाह ड्रामा वाह, ये शब्द मुख से निकलेंगे। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। वाह ड्रामा वाह, इसमें हर ड्रामा में हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण है। चलो बहुत अच्छा, हर बात में कल्याण है, समझते हैं तो ऑटोमेटिकली बुद्धि शांत हो जाती है। चलो बाबा को याद करेंगे, और डबल विदेशियों के लिए आज से कुछ दिनों तक कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे डबल विदेशी जा रहे हैं। और भारत वाले जो नीचे से आए हैं, हाथ उठाएं, भारत वाले जो नीचे से आए हैं, थोड़े से आए हैं, तो आप सभी का नाश्ता बड़े डाइनिंग हॉल में ऊपर में होगा, नीचे नहीं। चलो बाबा को याद करेंगे।